पृष्ठ संख्या 99। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस। फिलीपींस पर अमेरिकी शासन के दौरान इस देश को अमेरिका के आर्थिक उछल्ले की स्थिति में डाल दिया गया। वह अपने कुल निर्यात का 80%, खासकर चीनी, नारियल और तंबाकू अमेरिका को बेचता था। उसका 70% आयात अमेरिका से होता था। अमेरिकी शासन के अधीन उसके आर्थिक विकास का रूप बहुत कुछ वैसा ही था जैसा कि ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देशों का था। वह चंद फसलें सिर्फ अपने उपनिवेशी आका के हाथों में बेचने के लिए उगाता था। अधिकतर लैटिन अमेरिकी देशों की तरह यहाँ भी जमीन के मालिक बड़े बड़े जमींदार थे। कृषक असंतोष से आमूल परिवर्तनवादी राजनीतिक आंदोलन का जन्म हुआ था, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के साथ ही सामंती शोषण को भी समाप्त करना था। 1930 के दशक के आरंभ में किसानों का एक विद्रोह हुआ, लेकिन उसे दबा दिया गया। देश की आज़ादी के लिए अन्य राजनीतिक आंदोलन भी उठे। 1935 में इस द्वीप समूह को स्वायत्तता प्रदान की गई और साथ ही वादा किया गया कि 10 साल बाद उसे आज़ादी दे दी जाएगी। हिंद चीन इंडो चाइना। हिंद चीन में वियतनाम, लाओस तथा कंपुचिया, ये तीन देश शामिल थे। गुएन आइकोक, जो बाद में होची मिन के नाम से प्रसिद्ध हुए, हिंद चीन के सबसे बड़े नेता थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1 लाख वियतनामी फ्रांस भेजे गए थे, कुछ सिपाहियों के रूप में और कुछ श्रमिकों के तौर पर काम करने के लिए। उनका संपर्क कुछ समाजवादी तथा अन्य आमूल परिवर्तनवादी आंदोलनों से हुआ। होची मिन फ्रांस के साम्यवादी दल के गठन से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। 1925 में उन्होंने वियतनाम के क्रांतिकारी युवा संघ रिवॉल्यूशनरी यूथ लीग की स्थापना की। 1930 में विभिन्न साम्यवादी गुटों ने मिलकर वियतनाम साम्यवादी दल का गठन किया। बाद में इसे हिंद चीन की साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडो चाइना की संज्ञा दी गई। यह दल फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख शक्ति बन गया। एक और भी दल था, वियतनाम राष्ट्रीय दल, वियतनाम नेशनल पार्टी। इसकी रचना गोमिंदांग के आधार पर की गई थी। इस दल ने 1930 में एक विद्रोह का संगठन किया, लेकिन उसे दबा दिया गया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में, जिसे उसके औपनिवेशिक शासक डच ईस्ट इंडीज कहते थे, में डच शासक से मुक्ति के लिए राजनीतिक आंदोलन तथा श्रमिकों एवं किसानों के संगठनों का उदय 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इनमें इस्लामी गठजोड़, इस्लामिक अलायंस और इंडीज समाजवादी लोकतांत्रिक संघ, इंडीज सोशल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन शामिल थे। 1920 में इंडोनेशिया के साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया का गठन किया गया, जिसने जावा और सुमात्रा में विद्रोह का संगठन किया। डच सरकार ने इन विद्रोहों को दबा दिया। 1927 में अहमद सुकानो के नेतृत्व में राष्ट्रवादी दल नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। यही सुकर्नो आगे चलकर स्वतंत्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। यह दल स्वतंत्रता के लिए एकजुट और संगठित संघर्ष चलाने के लिए अन्य संगठनों तथा दलों को एक झंडे के नीचे ले आया। उसने देश के आज़ाद होने पर वहां समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य भी अपनाया। राष्ट्रवादी आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर डच सत्ताधारियों ने राष्ट्रवादी दल पर पाबंदी लगा दी और उसके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सुकर्नो भी शामिल थे। दमन की ये कार्रवाइयाँ कई वर्षों तक चलती रही। यहाँ तक कि आज़ादी की जंग की राजनीतिक चर्चा पर भी रोक लगा दी गई। वर्मा। वर्मा अब म्यांमार पर कब्जा करने के बाद ब्रिटेन ने उसे अपने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। 1937 में उसे भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा में राष्ट्रवादी आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों से ही, खास तौर से 1906 में युवा बौद्ध संघ यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन की स्थापना के साथ उभरने लगा था। भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के विकास का बर्मी राष्ट्रवादी आंदोलन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और दोनों देशों के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में आपस में घनिष्ठ संबंध कायम हो गए। 1920 में वर्मा संघ की आम परिषद जनरल काउंसिल ऑफ वर्मीज एसोसिएशन की स्थापना की गई। उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह उसने भी वर्मा के लिए स्वशासन की मांग प्रस्तुत की। 1930 के दशक में युवकों के एक संगठन की स्थापना की गई। ये लोग स्वयं को हाकिन या अपने देश के मालिक कहते थे। इस संगठन ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक वैसे ही अब भारत में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। इस संगठन के सबसे विख्यात नेता आंग सान थे, जो बाद में वर्मी साम्यवादी दल के नेता बने। वर्मा को भारत से अलग कर दिए जाने के बाद वहाँ भी 1935 के बाद भारत सरकार अधिनियम के ढंग के संवैधानिक सुधार लागू किए गए, लेकिन वे वर्मी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट ना कर पाए। सारी जनता में अंग्रेज विरोधी लहर फैल गई थी, जिसके फलस्वरूप पूरे देश में विरोधी मोर्चे और हड़तालों का तांता सा लग गया। मलाया के ब्रिटिश उपनिवेशों में कई राज्य शामिल थे, जिनमें से कुछ तो सीधे अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थे और कुछ अपने अपने स्थानीय शासकों के अधीन कमोवेश स्वायत्तता का उपभोग कर रहे थे। ब्रिटेन इस देश का शोषण मुख्य रूप से रबड़ और टीन के लिए करता था। बागानों और खानों के मालिक अंग्रेज थे और श्रमिकों को भारतीय मूल के बहुत से लोग शामिल थे। ब्रिटेन के एशियाई साम्राज्य के लिए सिंगापुर का बहुत अधिक महत्व था, क्योंकि वह व्यापारिक तथा रणनीतिक दृष्टि से दुनिया के एक बहुत ही अहम हिस्से में बसा हुआ था। मलय लोगों तथा भारतीय मूल के लोगों के अलावा मलाया में चीनी मूल के लोगों की भी खासी बड़ी आबादी थी, जो मुख्य रूप से वाणिज्य व्यापार में लगी हुई थी। अलग अलग नस्ली समूहों ने अपने अलग अलग राजनीतिक संगठन बना लिए थे। ब्रिटिश सत्ताधारी मलाया से संयुक्त राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय को रोकने के लिए इन्हीं नस्ली विभेदों का उपयोग करते थे। श्रीलंका सीलोन की आबादी में मुख्य रूप में सिंहली, तमिल तथा भारतीय मूल के बागान मजदूर शामिल थे। ब्रिटिश सत्ताधारियों ने वहां कुछ संवैधानिक परिवर्तन लागू किए, जिनसे श्रीलंका के समाज के ऊपरी वर्गों को देश के शासन में कुछ हिस्सेदारी हासिल हुई। 1931 में एक नए संविधान के तहत वहाँ की जनता को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया और एक विधानसभा की भी स्थापना की गई। इस सभा के सदस्य अंग्रेज सचिवों के साथ मिलकर शासन चलाते थे। 1930 वाले दशक में कई राजनीतिक दल गठित किए गए और कई ऐसे नेताओं को ख्याति प्राप्त हुई, जिन्होंने बाद में स्वतंत्र श्रीलंका के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।